يظهر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. आवाज आप लोगों को साफ आ रही है, कोई शोर वगैरह या कम आवाज का मसला तो नहीं है? कंफर्म कर दें अगर तो। इन आयात का तर्जुमा और खुलासे तफसीर हम पढ़ चुके थे, और पिछली क्लास में मआरिफ व मसाइल पर थे। मआरिफ अल कुरान जिल्द नंबर 5 से सफा नंबर 135 135 के ऊपर मआरिफ व मसाइल, इन आयात के हम पढ़ रहे थे। अब जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, वो अब बिल्कुल अपने ना क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंच चुका है, गोया कि इख्तितामी मराहिल के अंदर ये दाखिल हो चुका है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अब फिर से सामने आ चुके हैं, जो इतना अरसे तक अपने खानदान वालों की निगाहों से ओझल रहे। ठीक है, तो हम ये पढ़ रहे थे आखिरी दफा के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों के ये मस्कनत आमेज अल्फाज सुने, ये मस्कनत आमेज अल्फाज सुने और शिकस्ता हालत देखी, तो तबई तौर पर अब हकीकत हाल जाहिर कर देने पर मजबूर हो रहे थे। और वाकयात की रफ्तार का अंदाज ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो इजहार हाल की पाबंदी मिन जानिबिल्लाह थी, अब उसके खात्मे का वक्त भी आ चुका है। ठीक है, तो दोनों चीजें, एक तो अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का फैसला होता है जब भी कोई काम होता है। ठीक है, अल्लाह के फैसले के और तकदीर में जो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है, लिखा हुआ है, उससे हट के तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर का ये भी हिस्सा ही है कि अल्लाह ताला जब कोई काम करते हैं तो उसके लिए असबाब बनाते हैं, उसके लिए असबाब मुहैया करते हैं, और वो असबाब किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो मादी असबाब भी हो सकते हैं, वो रूहानी असबाब भी हो सकते हैं, वो नफ्सियाती असबाब भी हो सकते हैं। फकत किसी के दिल में ख्याल का आ जाना, ये भी अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ एक सबब ही है। ठीक है, और किसी का इस तरीके से बात कर देना के मस्कनत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए उसने और शिकस्ता हालत बनाई, ये भी अल्लाह के बनाए हुए असबाब ही हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, बल्कि दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, बस अल्लाह की तकदीर और जो असबाब का निजाम है इस दुनिया के अंदर। असबाब भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बन सकते। तो अब हमारे लिए सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, है ना, ना कुछ अच्छा काम करो ना कोई बुरा काम करो। हाँ भाई, अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है तो बुरे काम की भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना करो ना, ना बुरा काम करो, तो अगर अच्छा नहीं करना तो बुरा भी ना करो ना, सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। नहीं, वहां बुरे काम के लिए ना तकदीर हमें भूल जाती है, अच्छे काम के लिए तकदीर याद आ जाती है, क्या करने की जरूरत है जब तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई वो तकदीर एक एक रियलिटी है जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, बैकग्राउंड में चल रही है, फोरग्राउंड के अंदर ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है, और उस इख्तियार का जब हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर हमें सवाब मिलता है, फायदे मिलते हैं, और जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें नुकसान होता है। तो हमें इल्म हासिल करना है कि भाई क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है, कैसे उसको इख्तियार करना है, कैसे इससे इज्तनाब करना है, इसका इल्म हासिल करना है, और फैसले जो है वो सही इल्म के मुताबिक करने हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें सीखने की चीज हमारे अंदर, हमारे यानी इसके अंदर हमारे लिए सीखने की चीज क्या है कि मस्कनत आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने से और शिकस्ता हालत बनाने से अगले बंदे के ऊपर असर होता है। ठीक है ना, इन सब चीजों का असर होता है, और बंदे के ऊपर तो क्या असर होना, बंदों के परवरदिगार के ऊपर असर होता है, बंदों के परवरदिगार के ऊपर असर होता है। नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें ये दुआएं सिखाई कि जिनके अंदर मस्कनत आमेज अल्फाज भी हैं और शिकस्ता हालत भी है। ठीक है ना, सुन्नत से जो है वो हम शिकस्ता हालत भी सीखते हैं और अल्फाज भी सीखते हैं, तो अल्लाह से भी मांगने का यही तरीका है। अपने अंदर अकड़ हो, अपने अंदर जो है ना वो बेतलबी हो, अपने अंदर जो है वो बेध्यानी हो, इसके साथ अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह तो क्या देंगे, कोई बंदा तक नहीं देगा, कोई बंदा हमें एक ठेकरी पाई भी नहीं देगा अगर इस तरह से अकड़ करके मांगेंगे। तो अल्लाह ताला से अकड़ के मांगना कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैंने अब तक जो किया है वो सारे अपनी जहानत से किया है, अपनी मेहनतों से किया है, अपने इल्म से किया है, अपने बाप दादा के बलबूते पे किया है, और फिर अल्लाह से मांग रहा है। और क्या मांग रहे हो तुम अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हो, राइट? अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, तुम्हारे बाहर का भी पता है, अंदर का भी पता है कि क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कैफियात और ख्याल चल रहे हैं। इन कैफियात को अल्लाह के सामने मिटाना पड़ता है। ठीक है ना, अपने अंदर सही मानों में आजजी, इंकसारी पैदा करनी होती है, और अल्लाह ताला तो सब कुछ अंदर बाहर का जानते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं कि तफसीर कुर्तुबी व मजहरी में रिवायत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला नकल किया है कि इस मौके पर याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के नाम एक खत लिखकर दिया था जिसका मजमून ये था। अब तफसीर कुर्तुबी ये हमारे अकाबरीन की असलाफ में से, यानी असलाफ तो खैर पहली 3 जनरेशन के तो ये नहीं थे, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन फिर भी बहुत कई 100 साल पुराने बुजुर्ग थे। और मजहरी यानी हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई जो तफसीर है वो भी आज से 400 साल पहले की तो कम अज कम है वो तफसीर। तो हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की लिखी हुई तफसीरें हैं। तो उसके अंदर जो है ना ये एक रिवायत इब्ने अब्बास तआला से नकल करके उन्होंने लिखी है, और रिवायत बड़ी दिलचस्प है। तो उसका तर्जुमा यहाँ पे नकल किया, मिन जानिब याकूब सफी अल्लाह। सफी अल्लाह, ये सफी का जो लफ्ज है इसका मतलब साफ सुथरा, सफा, ठीक है, जैसे सफा साफ सुथरा, और दोस्त के लिए भी बहुत बेहतरीन यानी बेस्ट फ्रेंड जैसे ना, उसके लिए भी लफ्ज सफी इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह का दोस्त या अल्लाह ताला का साफ किया हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम की ये टाइटल अगरचे के और कहीं पे हमें नजर नहीं आता, लेकिन इस रिवायत के अंदर है याकूब सफी अल्लाह। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो है ये और भी ज्यादा, इब्ने इसहाक, यानी याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जो कि जबीहुल्ला है। जबीहुल्ला, क्या इसहाक अलैहिस्सलाम जबीहुल्ला है? नहीं, ठीक है, ये हमारा अकीदा नहीं है, ये बनी इसराइल का अकीदा है, ये यहूदियों का अकीदा है कि इसहाक अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने की कोशिश करी थी, ये हमारा अकीदा नहीं है। तो फिर ये तफसीर कुर्तुबी में और तफसीर मजहरी में कहाँ से आ गया? ठीक है, देखिए उन्होंने, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने भी या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसके ऊपर जो हाशिए वगैरह लिखे तो उसमें नीचे भी नकल किया है इसको, कि ज़बीह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसकी पूरी तहकीक सूरह सफ़ात पर देखी जाए, वहां पर बड़ी दलाइल के साथ जो है वो तहकीक भी लिखी हुई है। तो क्या इनको ये बात पता नहीं थी, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह को और काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह को, है कि जो बकरीद आती है तो उसमें हम जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल कर रहे होते हैं? ठीक है, तो अब ये क्या है ये इबारत? तो इसको फिर ना हमें या तो ऐसे एक समझना पड़ेगा कि या तो इसके अंदर तहरीफ हुई है, इबारत कुछ थी और इबारत के अंदर जो है ना वो बाद में, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेसेस भी नहीं होते थे, ठीक है, तो नकल की जाती थी, बाकायदा नकल करने वाले लोग होते थे, वो नकल करते थे। तो इस तरह से ना ये यहूदी जो हैं, ये हमेशा से इस मेहनत में लगे रहे हैं कि तारीख की किताबों को, या जो है वो अपने हमारे अकाबरीन की लिखी किताबों में ना कोई छोटी मोटी सी एक दो ऐसी तब्दीलियां कर दें कि जिसका किसी को पता भी ना चले, जिसका किसी को पता ना चले कि तब्दीली हो गई है, और ज्यादा तब्दीलियां ना करें वरना एक आम आदमी पहचान लेगा कि हाँ भाई ये तो लगता है कुछ गड़बड़ है इस किताब के अंदर। ठीक है, तो इस तरह की ना कुछ तब्दीली करके, ताकि जिसका के असर जो है ना वो पढ़ने वालों के अकीदे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से अकीदे पे असर हो, या तो जो है वो यानी नबियों के बारे में अकीदा खराब हो जाए, या नबियों के बारे में अगर अकीदा खराब ना हो जाए तो सहाबा के बारे में अकीदा खराब हो जाए, सहाबा के बारे में अकीदा खराब ना हो जाए तो जो लिखने वाले हैं ना उनके बारे में नजरिया खराब हो जाए कि देखो देखो बड़े बड़े आलिम बनते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि जबीउल्लाह जो है वो इसहाक अलैहिस्सलाम है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम है। तो किताब के मुसन्निफ के बारे में जो है ना बदगुमानी पैदा कर दी, यानी आलिम के बारे में बदगुमानी पैदा कर दी। ठीक है, तो इस तरह की तहरीफात जो है वो माजी में होती रही हैं, इनका इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बहुत कम होती रही हैं। और इसको आज के दौर में जो सोशल मीडिया मुफक्किरीन आए हुए हैं ना, जो कि पूरे की पूरे हमारे इल्म के खजाने को बिल्कुल ही ना पैर की ठोकरों के ऊपर उड़ा देने के दरपे हैं, तो उनकी बात भी नहीं सही है कि सब कुछ ही गलत है। भाई सब कुछ गलत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की तहरीफें होने के बावजूद उलमा का ऐसा निजाम अल्लाह ताला ने इस उम्मत की हिफाजत के लिए बनाया है कि बाकी उलमा जो है ना वो उसके ऊपर किसी ना किसी दर्जे में नकीर कर ही देते हैं, और बात जो है ना वो ऑन द रिकॉर्ड स्ट्रेट हो ही जाती है। ये अल्लाह ताला की हिफाजत है, ये कुरान मजीद में इस ऐलान का जुज है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, राइट, कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। हम समझते हैं कि सिर्फ अल्फाज कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, भाई अल्फाज का क्या है, कुरान मजीद के अल्फाज जो हैं बेशक अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन दीन की समझ अल्फाज से तो नहीं आती ना, दीन की समझ तो उसकी तशरीह से आती है ना। इस अल्फाज की हिफाजत और दीन की हिफाजत नहीं है, अल्फाज की हिफाजत है खाली, नहीं, अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है, दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, सिर्फ अल्फाज कुरान की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो दीन की हिफाजत जो है वो अल्लाह ताला उलमा के निजाम के जरिए से, हुफाज कराम के निजाम के जरिए से दीन के अकायद की हिफाजत करवाते हैं, कोई कितनी ही कोशिश कर ले इनको खराब करने की, ये दीन खराब नहीं हो सकता, ये दीन खराब नहीं हो सकता, ऑन द रिकॉर्ड ये ठीक ही रहेगा। सही है, अल्फाज कुरान की बात जो है ना वो कुदरतन अब आ गई है, तो आपके सामने एक और भी बात कर देते हैं कि आज सुबह ही जो हमारी खवातीन की दीन एसेंशियल्स क्लास होती है, तो उसके अंदर सूरह बनी इसराइल की तफसीर चल रही है। ठीक है, तो सूरह बनी इसराइल की के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا، कि जब आप नबी अलैहिस्सलाम जब कुरान मजीद की क़िरात करते हैं ना, तो हम आपके और आखिरत का इनकार करने वालों के दरमियान एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं, छुपा हुआ पर्दा। ठीक है, तो अब इस आयत के दोनों मफहूम कंफर्म है, दोनों मफहूम कंफर्म है कि छुपा हुआ जो पर्दा बना देते हैं, तो इससे एक मुराद तो ये है कि चूंकि ये आखिरत का इनकार करने वाले जो कि जिद और हठधर्मी में ज्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं ना, तो उनको इस कुरान की समझ की तौफीक नहीं मिलती, इस कुरान की समझ की तौफीक नहीं मिलती, अल्लाह ताला उनके कानों में डांट पैदा कर देते हैं, वजअलना अला कुलूबहिम अकिन्ना अन यफ्कहू वफी आदानिहिम वक्रा, उनको बात ही समझ में नहीं आती, तौफीक सल्ब कर लेते हैं अल्लाह ताला। और इसी आयत की दूसरी तफसीर भी अहादीस से साबित है, वो क्या कि जब कोई भी शख्स नबी अलैहिस्सलाम हो या कोई उम्मती हो या कोई फासिक फाजर हो या कोई फासिक फाजर कोई काफिर हो, अगर वो इन अल्फाज को पढ़ करके अपने दुश्मन की तरफ जिससे उसको कोई मसला है उसकी तरफ फूंक देगा, तो अल्लाह ताला इसको उसकी निगाहों से ओझल कर देंगे, अल्लाह ताला इसको उसकी निगाहों से ओझल कर देंगे। ठीक है ना। और इसकी तफसीर के अंदर मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने ये भी लिखा है कि सिर्फ ये वाली आयत नहीं बल्कि सूरह यासीन की भी आयत, राइट, इन्ना जालना ये वजालना मिन बैनी अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो तीन चार आयात कुरान मजीद में है कि जिसके जरिए से ये काम भी लिया जा सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी लिया और उम्मतियों ने भी लिया और आज भी उम्मती इसका काम ले रहे हैं। लेकिन इन आयात को इस्तेमाल करके बदनीयत लोग इन आयात को इस्तेमाल करके हराम का इस काम भी लेते हैं, स्मगलिंग करते हैं। स्मगलिंग समझते हैं ना, स्मगलिंग करते हैं, यानी कस्टम्स वाले के सामने जब माल खुलना था ना और कस्टम वाले ने आपके माल को पकड़ लेना था, तो ये वाली आयात पढ़ के कस्टम वालों की तरफ फूंक देते हैं, छुप जाते हैं उनकी निगाहों से। दिस इज ए रियलिटी, ठीक है ना। तो कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन मकसद क्या हासिल कर रहे हैं? हराम मकसद हासिल कर रहे हैं, नाजायज काम कर रहे हैं। क्योंकि स्मगल चीजें जो होती हैं वो अमूमी तौर पर वही होती हैं कि जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंचता है, राइट, जिनसे इंसानों को नुकसान पहुंचता है, और इंसानों को नुकसान पहुंचाना ये शरीयत के खिलाफ है। तो हराम काम ले रहे हैं ना ये, किस काम, किस तरीके से हराम काम कर रहे हैं? अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ के हराम काम कर रहे हैं। तो अब अल्फाज कुरान से ये क्या कमा रहे हैं, अल्फाज कुरान अल्लाह के कलाम का लफ्ज इस्तेमाल करके ये क्या कमा रहे हैं? जहन्नुम कमा रहे हैं, जन्नत नहीं कमा रहे हैं, जहन्नुम कमा रहे हैं। अच्छा, क्यों जहन्नुम कमा रहे हैं? इसका उसूली जवाब आप में से कोई दे दे भाई, क्यों जहन्नुम कमा रहे हैं? अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, जहन्नुम की कमाई कैसे हो गई जब अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं? तो बेशक कस्टम वालों के ऊपर फूंक रहे हैं और जो है वो बेशक जो है वो स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन पढ़ तो अल्लाह का कुरान रहे हैं ना, तो जहन्नुम क्यों कमा रहे हैं भाई? खामखा आप जो है ना, आपका दिमाग खराब है, आप तो ऐसे ही बस नहोगे, जन्नत के पीछे हाथों के पीछे पड़ गए हैं, तो आप कहते हैं जी रवाफिज की ऐसी तारीफ अकाबर की कुतुब में करते रहते हैं। हाँ, तेने वो बात तो पीछे हो गई, नीयत खराब है, ठीक है, नीयत तो खराब ही है, बेशक वो भी हम बता चुके हैं, लेकिन अब जब हम सवाल कर रहे हैं तो किसी वजह से सवाल कर रहे हैं ना, कि वो कोई नई बात आपसे सुनना चाहते हैं जो कि हमने नहीं करी है। चले, ये क्लास में मौजूद थी या थे जो भी सुबह की, तो उन्होंने माशाल्लाह सुना हुआ है, और अच्छी बात यह है कि सुना है और याद भी रखा है और समझा भी है बात को, समझा भी है बात को और याद भी रखा है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमने ये तो नहीं शर्त लगाई थी कि अगर आपने सुबह की क्लास नहीं सुनी भी है तो आप जो है वो जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो बहरहाल, तो क्यों जहन्नुम कमा रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, शरीयत की खिलाफ वर्जी, इससे अल्लाह ताला की रजा और इसकी, यानी इसके साथ अल्लाह ताला की रजा और नाराजगी, इसका ताल्लुक शरीयत के साथ है, अल्लाह के अहकामात के साथ है। कुरान के अल्फाज पढ़ने के ऊपर जो 10 नेकियां हैं ना, ये इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ने के ऊपर 10 नेकियां नहीं मिलती, क्योंकि नेकियां तो उस वक्त मिलेंगी ना जब वो कबूल होगा, बगैर कबूल हुए हुए खाली अमल कर लेने से नेकियां मिल जाती हैं? हरगिज नहीं, अमल करने के ऊपर नेकियां नहीं मिलती हैं, जब अमल कबूल होता है तब नेकियां मिलती हैं, क्या नहीं, गलत कह रहा हूं? तो कबूल कब होता है? जब अल्लाह ताला की शरीयत अहकाम के मुताबिक हो अमल, और ये जो अमल हो रहा है ये अहकाम के खिलाफ है। अब प्योर सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करें, क्या चीज ज्यादा अहम थी, क्या चीज ज्यादा अहम थी, अल्लाह का हुक्म या कुरान पढ़ना? अल्लाह का हुक्म या कुरान पढ़ना? कुरान पढ़ने के ऊपर अगर मुतलकन नेकियां मिलनी होती तो फिर स्मगलिंग में भी कुरान पढ़ने पे नेकी मिलती, राइट। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप कुरान मजीद पढ़ करके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर भी नेकियां मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भी कुरान पढ़ना असल चीज है ना भाई, असल चीज तो कुरान पढ़ना है, तो नेकी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुरान पढ़ना असल नहीं है, अल्लाह का हुक्म असल है, अल्लाह का हुक्म असल है, अल्लाह का हुक्म असल है। ये जो है ना, वो घोल के पिला देने के अलावा कोई और भी तरीका अगर होता ना, तो हम उस तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का हुक्म असल है। ठीक है, इस बात को याद रखें, इंशाल्लाह फायदा होगा। आगे जो है तो क्या कहते हैं भाई, बनी इसराइल की तरफ पहुंच गए थे। अच्छा, तो जबीहुल्ला, तो भाई ये या तो इनकी किताब में कोई तहरीफ किसी ने, शियाओं ने कर दी, रवाफिज ने कर दी, या किसी और ने कर दी, उस जमाने के गामदी ने कर दी, उस जमाने के किसी और ने, कादियानी ने कर दी, किसी ने कर दी, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई ये इसराइली रिवायत थी, इन्होंने सिर्फ इसराइली रिवायत जो है ना वो मजमून से रिलेटेड थी उसको यहाँ पे जिक्र कर दिया, कोई हाशिया वाशिया किसी तरीके से जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी होगी। यानी जबीहुल्ला वाला मामला तो बिल्कुल भी हमारे यहाँ क्लियर है, इस्माइल अलैहिस्सलाम ही से होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो मजमून है, तो असल तो वो मजमून बयान करना था ना कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ये असर हुआ ना, तो देखें एक मकतूब भी आया था याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ से, उस मकतूब का इनके ऊपर असर हुआ, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से बात को क्लियर कर देना जो है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो फरमाते हैं कि मिन जानिब याकूब सफीउल्लाह इब्न इसहाक ज़बीहुल्लाह इब्न इब्राहिम खलीलुल्लाह बिखिदमत अजीज मिस्र अम्मा बाद, यानी अब इसके बाद ये सारी बातें हो गई, उसके बाद फरमाते हैं कि हमारा पूरा खानदान बलाओं और आजमाइशों में मारूफ है, मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का नमरूद की आग से इम्तिहान लिया गया, फिर मेरे वालिद इसहाक का शदीद इम्तिहान लिया गया, यानी उस रिवायत के मुताबिक वो जबा होने के लिए पेश किए गए तो वो उनका इम्तिहान था, फिर मेरे एक लड़के के जरिए से मेरा इम्तिहान लिया गया जो मुझको सबसे ज्यादा महबूब था, यहाँ तक कि उसकी मुफारकत में मेरी बीनाई जाती रही, इसके बाद उसका एक छोटा भाई मुझ गमजदा की तसल्ली का सामान था यानी बुन्यामीन, तो जिसको आपने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, और मैं बतलाता हूँ कि हम औलिया औलाद अम्बिया हैं, ना हमने कभी चोरी की है ना हमारी औलाद में कोई चोर पैदा हुआ है, वस्सलाम। ये मकतूब उन्होंने भेज दिया अपने बेटों से भी खुशगुमानी का इजहार करते हुए, हालांकि बेटों की हरकतों का भी उनको पता था कि उन्होंने तो मेरे बेटे को चोरी कर लिया, यूसुफ को मुझसे चोरी कर लिया, लेकिन बड़े जो होते हैं ना वो फिर चीजों के ऊपर मिट्टी डाल दिया करते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये खत पढ़ा तो कांप गए और बे इख्तियार रोने लगे और अपने राज को जाहिर कर दिया, और तआरुफ की तमहीद के तौर पर भाइयों से ये सवाल किया कि तुमको कुछ ये भी याद है कि तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके भाई के साथ क्या बर्ताव किया था, जबकि तुम्हारी जहालत का जमाना था कि भले बुरे की सोच और अंजाम बीनी की फिक्र से गाफिल थे। जहालत की तारीफ जो हमारे क्रिएटर ने दी है ना, हमारे बनाने वाले ने, वो जहालत की तारीफ ये है कि इंसान को अपने भले बुरे का पता ना हो, और भला बुरा अल्लाह की तारीफ में वो है कि जिससे अल्लाह राजी होता हो वो भला है, और जिससे अल्लाह नाराज होता हो वो बुरा है। वो भला बुरा नहीं कि जिससे कि दुनिया की कमाई हाथ आ जाए और जो है वो माल पैसा आ जाए, या दुनिया में शोहरत हो जाए, दुनिया में इज्जत हो जाए, वो भला नहीं होता अगर अल्लाह उससे नाराज हो रहा है। हाँ, अगर अल्लाह भी राजी हो रहा है और दुनिया की दौलत भी आ रही है तो नूर नारा नूर, कोई उसके अंदर इनकार नहीं है कि नहीं जी अल्लाह नाराज जो है वो दुनिया की दौलत के साथ अल्लाह राजी नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भले बुरे की तारीफ जो है ना वो यही है। बरादरान यूसुफ ने जब ये सवाल सुना तो चकरा गए कि अजीज मिस्र को यूसुफ के कस्से से क्या वास्ता, फिर उधर भी ध्यान गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बचपन में ख्वाब देखा था उसकी ताबीर यही थी कि उनको कोई बुलंद मर्तबा हासिल होगा, कि हम सबको उसके सामने झुकना पड़ेगा, कहीं ये अजीज मिस्र खुद यूसुफ ही ना हो। ठीक है, चूंकि ये लोग पहले से यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद में मुबतला थे ना कि बाप की तवज्जो यूसुफ की तरफ ज्यादा क्यों है, और यूसुफ इतने हसीन क्यों है, और यूसुफ ऐसे क्यों है, तो जब पहले से इंसान के अंदर किसी के खिलाफ गुस्सा होना, तो अब उसके बारे में कोई हकीकी अजमत भी पता चल जाए ना, हकीकी भलाई भी पता चल जाए, तो गुस्सा रफू नहीं हो जाता बल्कि और बढ़ जाता है, जिसको कि अंग्रेजी जुबान में फिर फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अंग्रेजी में दो अल्फाज है, एक लफ्ज है एंगर और दूसरा लफ्ज है फ्रस्ट्रेशन। एंगर का अलग मतलब है प्योर सिंपल गुस्सा, और फ्रस्ट्रेशन ये भी एक गुस्से की शक्ल है, लेकिन ये कब कि जब एंगर वाल जिसके ऊपर एंगर आ रहा है ना, जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, वो यानी कोई यानी उसकी फजीलत सामने आ जाए, उसकी कोई अच्छाई सामने आ जाए, उसकी जो है ना वो कोई कामयाबी सामने आ जाए, इसके ऊपर इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। ठीक है, हाँ किस्मत अच्छी होगी या मतलब अकलमंद होगा तो किसी की फजीलत सामने आने के बाद माफी मांग लेगा, अल्लाह ताला से माफी मांग लेगा या उस बंदे से भी जाके माफी मांग लेगा, भाई मैं गलत आपके ऊपर गुस्सा हो रहा था, अब आपकी हकीकत मेरे सामने आ गई है, अब मैं तौबा करता हूँ। जैसे कि हमारे अकाबरीन में ऐसा होता था किसी दूसरे बुजुर्ग के खिलाफ इस बात पे गुस्सा कि भाई उन्होंने जो है वो ऐसे कैसे कह दिया, उन्होंने ये वाला हुक्म कैसे अपने फिका के अंदर लगा दिया। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था ना, वो कौन थे बड़े बुजुर्ग उनके जमाने के, क्या नाम था उनका, खैर वो बड़े गुस्सा थे। तो इमाम ये जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ काम कर चुके थे उनकी कमेटी के अंदर, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिका की कंपाइलेशन की एक एक बुक थी, एक किताब थी, वो उन बुजुर्ग को ला करके दे दी और कहा कि ये किसी की किताब है, आप जरा पढ़ के बताएं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास छोड़ जाओ, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैं रात को इसका मुताला कर लूंगा। तो जब सुबह को अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इनके पास आए, पूछा जी आपने वो किताब का मुताला किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उस किताब का मुताला कर लिया है और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि उस शख्स का कभी भी दामन मत छोड़ना जिसने ये किताब लिखी है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया कि ये उन्हीं की लिखी हुई किताब या उन्हीं के मसाइल की के ऊपर कंपाइल किताब है जिनसे कि आप इतना नाराज रहते हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा अच्छा ये अबू हनीफा की किताब है ये, ओहो मैं तो बहुत बड़ी गलती में मुब्तला था। फौरन जो है अपनी गलती से तौबा कर ली, फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं हो गए, क्योंकि उनकी जो नाराजगी थी वो उनकी समझ की बुनियाद पर थी, उसके अंदर कोई नफरत और कोई उसके अंदर बुराई नहीं थी, गलत नीयत नहीं थी, अच्छी नीयत से नाराज हुए हुए थे ना, क्योंकि दीन की हिफाजत उनका मकसद था। वो समझ रहे थे कि इमाम हनीफा जो है वो अपनी तरफ से जो है ना वो लॉजिक्स लगा लगा करके हुक्म दे रहे हैं और जो है वो शरीयत और कुरान और हदीस को पीछे छोड़ रहे हैं, उनकी गलत फहमी थी ये, ठीक है। लेकिन जिसका रूहानी मर्ज जिसकी वजह होती है उससे की उसकी गलत फहमी दूर नहीं होती, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और फ्रस्ट्रेशन में तब्दील हो जाता है। यही मामला इन बेचारों के साथ भी हुआ था, ठीक है। बाद में खैर तौबा कर ली थी, लेकिन शुरू में तो ये सब कुछ कर लिया था ना। तो जब इन्होंने उनको पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा होने वाला है, तो जब और उन्होंने गौर व तामुल किया तो कुछ अलामात से पहचान लिया और मजीद तहकीक के लिए उनसे कहा इन्नका लअंत यूसुफ, यानी कंफर्मेशन के लिए उनसे फिर एक्सप्लिसिटली भी पूछा क्या आप वाकई यूसुफ हैं सचमुच। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये बुन्यामीन मेरा हकीकी भाई है। भाई का जिक्र इसलिए बढ़ा दिया कि उनको अच्छी तरह यकीन आ जाए, यानी अगले बंदे को अगर यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ एडिशनल बात भी करनी पड़ जाए ना तो वो भी कर देनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप खाली एक सिंपल सा मुख्तसर जवाब देने से अगर आपको एहतमाल हो कि उसको इत्मीनान नहीं होगा तो आगे से वो भी बात कर दें कि जिससे कि आपको यकीन हो के उसको यकीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी कुरान मजीद से हमें मिलती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को ना अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने तो सिर्फ ये पूछा था कि तुम्हारी हाथ में क्या है ए मूसा, ठीक है ना, तो उनको मोहब्बत का यकीन दिलाना था कि भाई देखें मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ, मैं आपसे जो है वो राजो न्याज करना चाहता हूँ। तो एक जुमले का जवाब देने की बजाय या एक लफ्ज में भी जवाब दिया जा सकता था, उन्होंने पूरी कहानी छेड़ दी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अल्फाज कह देना जो है ना वो फिर ये यानी कुरान मजीद से साबित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका ताल्लुक होना चाहिए, यानी फजूल की बातें करना इसका मतलब नहीं है कि बुजुर्ग की बातें करना शुरू कर दो, ठीक है। बहरहाल मोहब्बत वालों का दिल तो होता है कि वो बात करें अपने महबूब से, ठीक है, लेकिन एक तो ये कि बात की तौफीक हर एक को मिलती नहीं है, ठीक है ना। हबीबुल्लाह जो थे सल्लल्लाहु वसल्लम, उनको जो है ना वो एक मौके के ऊपर जब मेराज में बुलाया गया और सिदरतुल मुंतहा से आगे पहुंचाया गया तब जो है वो एक मरतबा कलाम की तौफीक मिली, हालांकि हबीबुल्ला कौन थे वो थे, और जो हबीबुल्ला नहीं थे जो कि कलीमुल्ला थे, कलीमुल्ला साहब जो है वो रोजाना बात कर रहे हैं, जब मतलब माशाल्लाह बात पे बात करे चले जा रहे हैं, कलीमुल्ला का लकब उनको मिल गया, ठीक है ना। तो तो भाई बात कर देना जो है ना वो सबसे बड़ी अफजलियत की भी मुकाम नहीं होता, वरना तो नबी अलैहिस्सलाम को भी इस तरीके से कोई जगह मिल जाती जहाँ पे जाकर के बात किया कर रहे होते। नबी अलैहिस्सलाम को तो वास्ता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से बात करने की का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़ा चाहते हैं भाई कि अपने हजरत से बात करें और एक एक लंबी लंबी, लेकिन जो जानने वाले हैं उनको भी पता है कि कितना मुश्किल होता है बात करना, और जब बात करते भी है ना चल जल्दी 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 ये जल्दी खत्म करो, जल्दी पूरा करो, हम तो लिख करके लेके जाते हैं और उसके अंदर से भी आधी चीजें पूछ पाते हैं आधी चीजें पूछ नहीं पाते, कोई और आ जाता है, या हजरत खुद ही जो है ना वो कोई और काम में लग जाते हैं या कुछ और जाता है, यानी फजूल की बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं। और ये तो हम मर्दों का हाल है, और औरतों को तो वैसे भी बात करने की का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो फिर जो है ना जिनको बात करने का मौका नहीं मिलता तो उनको लिख करके बात करनी होती है, लिख करके बात करनी होती है। ठीक है, हजरत के खुदाम हैं वो माशाल्लाह बात कर रहे होते हैं, और जो जिनको हजरत ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो जो है वो बात ही नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनकी सब खतो किताब के जरिए से फिर बात होती है, और ये गलत फहमी है, ये एक गलत फहमी है कि खतो किताबत के जरिए से पूरी बात नहीं की जा सकती, ये गलत फहमी है। ठीक है ना, ये रूहानी दुनिया में इस किस्म के जो है ना ये क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस और इस किस्म की लिमिटेशंस ये रूहानी दुनिया में नहीं होती। ठीक है, तो जो जो इस ये इब्तिदा में अच्छी बात है भाई, हाँ चाहत होती है कि बात करें, बात समझ में नहीं आ रही होती है कि भी बात के बगैर काम कैसे चलेगा, राइट, और उनको कहा जाए कि लिख के बात करें तो बड़ा तकलीफ होती है कि नहीं नहीं लिख के कैसे काम बात हो सकती है, लेकिन जिनकी रूहानी तरक्की हो रही होती है ना, जिनको रूहानियत का एक्सपोजर मिल रहा होता है ना कि जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के क्या तकाजे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे प्रोग्रेस होती है, उनकी ये गलत फहमी थोड़े अरसे में दूर हो जाती है, उनकी गलत फहमी थोड़े अरसे में दूर हो जाती है, अब उनको इत्मीनान नसीब हो जाता है। ठीक है कि भाई बात किए बगैर भी जो है ना वो सब चल रहा है, सारी कम्युनिकेशन हो रही है, और जो कहा जा रहा है लिख करके वो हम लिख करके कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो हुक्म की अताअत है तो लिख करके हम बात करेंगे, राइट, और मरने के बाद की जिंदगी जो कि हमेशा हमेशा की जिंदगी है तो वो बहुत है भाई वक्त, उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी वक्त की, सारी कमी तो इस दुनिया के अंदर है। ठीक है, तो ये गलत फहमियां जो है वो बेशक शुरू में होती हैं, मुब्तदी के साथ होती हैं, बिगिनर्स के साथ होती हैं, लेकिन अगर हमारी रूहानी तरक्की हो जाए ना, या हम उन तकाजों को पूरा कर लें ना जिनसे रूहानी तरक्की होती है, तो फिर ये गलत फहमियां हमारी दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो बहरहाल बात कहाँ से शुरू हुई थी, इन्नका लअन्त यूसुफ, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब क्या दिया, हाँ अना यूसुफ वहादा अखी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बात करके बात समझा दी, यकीन दिलवा दिया, तो नीज इसलिए भी कि उन पर उस वक्त अपने मकसद की मुकम्मल कामयाबी वाजे हो जाए कि जिन दो की तलाश में तुम निकले थे वो दोनों बयक जा तुम्हें मिल गए। ठीक है ना, यू हैव रीच योर योर टारगेट। सही है, फिर फरमाया कि कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदीउ अजर अल-मुहसिनीन, यानी अल्लाह ताला ने हम पर एहसान करम फरमाया कि अव्वल हम दोनों को सब्र व तक्वा की दो सिफतें अता फरमाई जो कलीद कामयाबी और हर मुसीबत से अमान। ये एक्स्ट्रा जुमला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपने मनसब का हक अदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो फकत इन लोगों के भाई नहीं थे, फकत इन लोगों के रिश्तेदार नहीं थे कि हाँ भी अपनी रिश्तेदारी प्रूव कर दी, अपना भाई होना प्रूव कर दिया, नहीं, वो इससे बढ़ करके अल्लाह के नबी थे, और नबी का काम जो है ना वो क्या होता है, वो अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाना होता है, लोगों की इस्लाह करना होता है, तरबियत करना होता है, तो तरबियत का काम भी साथ साथ जारी रहेगा, उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा कभी, तो चलो जी रिश्तेदारों के साथ है ना तो अभी जरा फन और जरा दूसरी किस्म की बातें कर लो, है ना, जब उसके बाद बाहर जाएंगे ना रिश्तेदारों से दूर जाएंगे तब दीन का काम करेंगे, नहीं, नबियों का तो दीन का काम शुरू ही रिश्तेदारों के साथ होता है, शुरू ही दीन का काम रिश्तेदारों के साथ होता है, हमारी तरह कोई थोड़ी क्या, हमारा दीन का काम शुरू अमेरिका से होता है, या शुरू जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से होता है, या शुरू जो है ना वो इसराइल की दुश्मनी से शुरू होता है, और रिश्तेदारों तक बात ही नहीं आती कि वो नाराज हो जाएंगे हैं, वो हमसे रूठ गए तो फिर हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। अल्लाह तो है नहीं, वरना तो जो सही मानो भी दीन वाले होते हैं, दीन का काम करने वाले होते हैं, तो भाई उनका तो रफीक जो होता है ना, इन्नमा रफीक है ना, वो रफीकुल आला, रफीक ही रफ, तो अल्लाह ताला उनका रफीक होता है ना, उनको इसकी परवाह नहीं होती कौन सा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, कौन मुझसे दूर हो जाएगा, कौन मुझसे नाराज हो जाएगा। भाई अल्लाह तो है ना, रिश्तेदार होते रहे नाराज, अल्लाह नाराज होना चाहिए, ठीक है, और अल्लाह साथ है जो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो काम, तबलीग का काम रिश्तेदारों से शुरू करते हैं, रिश्तेदारों से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तबलीग किसके साथ कर रहे हैं, सगे भाइयों के साथ, अब्बा के पास तो करने की जरूरत नहीं, वो तो इनसे भी बड़े अल्लाह के नबी हैं, तो फिर अब दूसरे रिश्तेदार कौन आ गए, अपने भाई, ठीक है। तो तबलीग भी कर दी, कद मन अल्लाह इन्नहु मन यत्तकी वजह, देखो रसूल बयान कर रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, जहन साजी कर रही हैं, क्योंकि तरबियत जहन साजी से शुरू होती है, जहन साजी से शुरू, सिर्फ चमचे काटे पकड़ के खाना खिलाना ये अंग्रेज की तरबियत होती, खाना इस तरीके से खाना चाहिए, या ये कि दीनदार हो गए तो अब ये इस तरीके से पैर रख करके और इस तरीके से हाथ से जो है ना वो निवाला बना, भाई वो दूसरी बात है, वो दूसरी चीज है, वो सुन्नत है, आमाल की सुन्नत है, कैसे खाना चाहिए, सबसे पहली चीज है जहन साजी, जहन साजी, और वो जहन साजी जो है वो उसूलों के इल्म से होती है, उसूलों के इल्म से। तो क्या उसूल बयान फरमा रहे हैं कि कलीद कामयाबी, यानी कामयाबी की कुंजी, कामयाबी की चाबी और हर मुसीबत से अमान क्या है, सबर और तकवा, नेकी के ऊपर इस्तेकामत, जिसको सबर कहा जाता है, और तकवा, गुनाहों से बचना। फिर हमारी तकलीफ को, अच्छा तो उन्होंने हमें ये दो सिफतें अता फरमाई, यानी दो सिफतें अपने अंदर की थी लेकिन क्रेडिट अल्लाह ताला को दे दिया, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें दो सिफतें अता फरमाई। फिर हमारी तकलीफ को राहत से, इफ्तिराक को इज्तिमा से, यानी हम दोनों भाई जो है वो जुदा थे तो हमें जमा कर दिया, और मालो जाह की किल्लत को इन सब की कसरत से तब्दील फरमा दिया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी माल अता फरमाया और पोजिशन अता फरमाई, जाह कहते हैं दुनियावी जाहो मर्तबा, और बुनियामीन को माल कैसे अता फरमाया, बुनियामीन तो अभी जो है वो आकर के भाई के पास रह रहे हैं, नहीं, भाई के पास रहने से भाई भी इनके ऊपर जो माल खर्च करेंगे वो भी इन्हीं को मिली हुई अल्लाह की नेमत है, ये नहीं है कि भाई ये तो भाई के मैं पैसे खा रहा हूं तो मैंने तो खुद कमाया नहीं है तो इस वजह से मेरे ऊपर तो अल्लाह की नेमत नहीं हुई, मैंने तो कमाया नहीं, मैंने तो नौकरी नहीं करी, मैंने तो जॉब नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि मेरे ऊपर अल्लाह की नेमत नहीं है, सिर्फ भाई के ऊपर अल्लाह की नेमत है, नहीं, दिस इज नॉट कुरान अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट द अंडरस्टैंडिंग दैट वी गेट फ्रॉम कुरान, ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, ये कुछ बेवकूफों ने ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मुसलमानों में भी फैला दी है, कि जब तक खुद जो है ना वो जाके जॉब नहीं करोगे, जब तक खुद जो है वो दुकान पे नहीं बैठोगे, जब तक खुद जो है वो क्या कहते हैं कुल्हाड़ा नहीं चलाओगे, तो उसके बगैर जो है ना यू डोंट डिजर्व एनीथिंग। भाई कस्बु यानी कासिबु अल कासिबु हबीबुल्लाह का यही खाली एक मतलब है, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ाया कि भाई तुम मांगने की बजाय जो है ना जाके कुल्हाड़े से खुद लकड़ी को काटो और फिर खुद कमाओ तो वो अल्लाह ताला के हबीब बन जाओगे। तो अब जो घर के अंदर बैठी हुई औरत है उसको भी अलकासिबो हबीबुल्ला है, जाके कि तुम भी कुल्हाड़ा लो और दरख्त काटो और तुम भी कमाओ, वरना यू डोंट डिजर्व योर हस्बैंड्स इनकम, है ना, आजकल तो शादी भी इसी वजह से करी जाती है ना कि बीवी भी कमाएगी, वरना तो वो बेगैरत बन करके शौहर का खाएगी, सास ताने देती है ना आजकल, बल्कि ससुर भी ताने देते हैं ना आजकल, राइट, कि घर बैठी खा रही है, शौहर कमा के लाता है, ये घर बैठी खा रही है, क्योंकि खुद नहीं कमाया उसने, खुद जॉब नहीं करी, देखो ये तो यूनिवर्सिटी तक नहीं गई थी, इसके पास तो डिग्री तक नहीं है, तो नौकरी नहीं कर सकती, या नौकर अगर डिग्री थी भी तो भी नौकरी नहीं कर रही, घर बैठी हुई हट हराम कहीं की, ये काफिरों का नजरिया है, ये शैतान का नजरिया है, और बदकिस्मती हमारी, हमारी बदबख्ती के दीनदार होने के बावजूद हम शैतान के नजरिए को लेकर के चल रहे हैं। भाई शौहर जो कमा रहा है, अल्लाह ताला ने शौहर को कवाम बनाया है, शौहर को जिम्मेदार बनाया है, बीवी का हक है शौहर की कमाई के ऊपर, वो बीवी का भी माल है, शौहर के वास्ते से अल्लाह ताला उसको पहुंचा रहे हैं, शौहर के वास्ते से उसको अल्लाह ताला पहुंचा रहे हैं। इस जाहिल साहब को ये बात पता नहीं है जो इस तरह की बातें कर रही है कि घर में बैठी हड़ हराम कहीं की, वो जाहिल है वो सास, ये जहालत होती है। यूनिवर्सिटी की डिग्री का ना होना ये जहालत नहीं होती है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भाई जो है वो दीन का काम कर रहा है और दूसरा भाई जो है वो दुकान पे बैठ करके कमा करके उसको खिला रहा है, तो दीन के काम करने वाले को कहेंगे कि ये हड हराम है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि वो जो तुम्हें दुकान के ऊपर जो मिल रहे हैं ना पैसे, वो तुम्हारे उस भाई की वजह से मिल रहे हैं जो कि अल्लाह की इबादत कर रहा है, जो कि दीन का काम कर रहा है, राइट। मेरे पास किसने लिखा है यहाँ पे, मेरे पैसों पे पल रही है, मेरे मेरा दिया खाती है, ये बातें सुसर साहब फरमाते हैं, क्योंकि सुसर साहब का जो है ना वो नजरिया क्या है कि वो अपने आप को खुदा समझते हैं, वो अपने आप को राजक समझते हैं, वो अपने आप को राजक समझते हैं, ठीक है। तो ये जहालतें हैं, इल्म के जरिए से इन जहालतों को दूर करेंगे तब बात बनेगी, वरना ये जहालतें जो है ना ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफर हो रही हैं, ये हमारी पिछली जनरेशन से चली हुई आ रही हैं और ये अगली जनरेशन में भी इसी तरीके से पहुंच जाएंगी, बल्कि बढ़ जाएंगी ये जहालतें और ज्यादा, ठीक है। तो बुनियामीन ने कोई बादशाह के सामने मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में बात नहीं करी थी, बुनियामीन ने कोई जो है वो ख्वाब की ताबीर नहीं बताई थी, बुनियामीन ने कोई जो है ना वो खजाने की मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो बादशाह मिस्र को नहीं बताए थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं और सच फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें दी है ना, मन्नल्लाहु अलैना, ना ये जमा का सीगा है, अल्लाह ताला ने हम दोनों के ऊपर फजल फरमाया है, सिर्फ मेरे ऊपर फजल नहीं फरमाया, और मैं जो हूं वो भाई को भीख नहीं दे रहा हूं, बल्कि अल्लाह ने हम दोनों के ऊपर फजल फरमाया है। क्लियर हो गई बात सबको या नहीं क्लियर हुई? इसकी इम्प्लीकेशंस देखी हैं आपने, हमारे घर की जिंदगी में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, जो हमने औरत को एम्पावर करने का गलत मतलब जो है वो निकाला हुआ है कि उसको यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलवाओ और उसके बाद उसको जॉब करवाओ ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और खुद कमा के खुद खा सके, ये हमारी जहालत है। औरत को जिस चीज में एम्पावर करना था उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है, घर बनाने में, घर संवारने में, घर वालों को बनाने में और घर वालों के साथ बनाने में, इसमें उसको एम्पावर करना था, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, उसकी हमें फिक्र ही नहीं है, कभी घर टूट रहे हैं और बाजार सवर रहे हैं, मॉल्स सवर रहे हैं, वर्क प्लेसेस सवर रहे हैं, लेकिन घरों की ऐसी की तैसी हो रही है, क्योंकि घर बनाने वाली उसको उसको बनाने वाले जो मर्द थे वो जाहिल हो गए, दुनिया परस्त हो गए, शैतान परस्त हो गए, लंबी लंबी दाढ़ियां रखने के बावजूद शैतान परस्त हो गए, ठीक है जी। कोई एतराज हो तो बता दीजिएगा, अभी तो क्लास का टाइम खत्म हो गया है, वरना व्हाट्सएप के ऊपर हम हाजिर होते हैं आपके मैसेज को सुनने और जवाब देने के लिए। आखिर दुआना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नोट्स आपकी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो अस्सलाम वालेकुम।